दिन भर तारीख 10 दिसंबर दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के पहले पीएम मोदी का कांग्रेस पर एक और आरोप, राहुल गांधी का पलटवार।
पाकिस्तान ना हाई कमिश्नर, भारत ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री मणिशंकर ना करे मीटिंग मिली।
मोदी जी कह रहे हैं भैया मैं 22 साल की बात नहीं कर सकता।
हरियाणा के हिसार में 5 साल की बच्ची के कथित रेप और हत्या मामले में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं, पीड़ित की मां बोली,
इंसाफ मिलने चाहिए हम गरीबा को, उसको सजा होने चाहिए, उसको फांसी मिलने चाहिए।
और संग संग गुनगुनाओगे मैं आज बात संगीतकार वनराज भाटिया की, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। गुजरात के चुनावी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुजरात चुनाव में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। रविवार को बनासकांठा के पालनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर पर चुनावों से पहले एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें पाकिस्तानी उच्चायुक्त, एक पूर्व पाकिस्तानी अधिकारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति शामिल थे। अरब देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका से यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। काहिरा में हुई बैठक के बाद जारी किए गए बयान में अरब लीग ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले से मध्य पूर्व में हिंसा बढ़ने के सिवा कुछ नहीं होगा। अरब लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फलस्तीनी राज्य की राजधानी के तौर पर पूर्वी यरूशलम को मान्यता देने की अपील की। वहीं इसी मसले पर दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों मसलन लेबनान, तुर्की, मिस्र और मोरक्को में ट्रंप के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमरीकी दूतावास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन ने झड़प का रूप ले लिया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और पानी की तेज धार का इस्तेमाल किया। इस प्रदर्शनकारी ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर इस तरह विरोध जताया। यह अमरीकी यहूदियों का किया हुआ है, वे लोगों, बच्चों और हमारे फलस्तीनी लोगों को हाशिए पर धकेल रहे हैं। हमारी तरफ कोई नहीं है, कोई अरब देश भी नहीं, हम फलस्तीनी झंडा ही उठाएंगे। ये थे बेरूत में अमरीकी फैसले के खिलाफ उतरे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के 20 और संस्थानों और एक दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ नए एकपक्षीय प्रतिबंधों का ऐलान किया है। दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन पाबंदियों का मकसद हथियारों के लिए अवैध फंडिंग के प्रवाह को रोकना है। इन कंपनियों और लोगों को पहले से मौजूद एक ब्लैक लिस्ट में जोड़ा गया है। इनमें से ज़्यादातर बैंकिंग और शिपिंग के क्षेत्र से जुड़ी हैं और अमरीका ने पहले ही इन पर पाबंदी लगा रखी है। 2 हफ्ते पहले ही उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसके बारे में दावा किया गया था कि अमेरिका में कहीं भी वार कर सकती है। 3 साल तक चली इस्लामिक स्टेट से जंग जीतने के ऐलान के बाद इराकी सुरक्षा बल बगदाद में जीत की परेड कर रहे हैं। एक समय इस्लामिक स्टेट ने इराक के एक तिहाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कल इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी ने इराक को पूरी तरह इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मुक्त घोषित कर दिया था। आज के दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि अब भी ऐसी चिंताएं हैं कि चरमपंथी छिपकर हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इराकी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व प्रमुख मुवाफक अल रबी ने कहा,
Victory need to be consolidated by stabilizing
3 मुक्त क्षेत्रों में काम करके इस जीत को बड़ा किया जाना चाहिए। वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ाना चाहिए, वहाँ रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि इस्लामिक स्टेट के दोबारा खड़े होने को रोका जाए। ये थे इराकी सांसद मुवाफक अल रबी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटिश ईरानी महिला नाजनीन जगारी को जल्द रिहा करने के समझौते के बिना ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन अपना 2 दिवसीय ईरान दौरा ख़त्म करके वहां से निकल गए हैं। उनके दौरे से पहले ब्रिटिश पक्ष को उम्मीदें थीं कि नाजनीन जेल से बाहर आ सकेंगी और बोरिस जॉनसन के विमान में ब्रिटेन में अपने घर लौट सकेंगी। ब्रिटिश अधिकारियों ने जॉनसन और ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी की बातचीत को बेबाक बताया है। नाजनीन जगारी रेडक्लिफ ईरानी सरकार का तख्ता पलट करने के आरोप में साल 2016 से 5 साल जेल की सजा भुगत रही हैं। 24 सूडानी महिलाओं पर खार्तूम में हुई एक पार्टी में पतलून पहनने पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं। बुधवार को इस पार्टी पर शाही पुलिस ने छापा मारा था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। 16 दिसंबर 2012 यानी अभी से करीब 5 साल पहले राजधानी दिल्ली में एक पैरामेडिकल स्टूडेंट से चलती बस में बलात्कार हुआ। उसके बाद देश गुस्से में उबल पड़ा, हर तरफ गुस्से की लहर नजर आने लगी। महिलाओं की सुरक्षा तय करने के लिए कानून में भी बदलाव हुआ, लेकिन अब भी सुरक्षा का सवाल सामने है। हिसार की एक झुग्गी से लेकर महानगरों के बीच हवाई उड़ान तक महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों की वजह क्या है, हम आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन दिन भर की शुरुआत गुजरात की जमीन से उठ रहे सियासी सवालों से। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का मतदान 14 दिसंबर को होगा। 93 सीटों पर होने वाली वोटिंग के पहले चुनाव प्रचार लगातार तीखा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर एक नया आरोप लगाया तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर एक बार फिर थे मणिशंकर अय्यर। एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अखबारों में आई रिपोर्टों के हवाले से दावा किया कि मणिशंकर अय्यर के घर बीते दिनों एक बैठक हुई थी जिसमें पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मौजूद थे।
पाकिस्तान ना एक भूतपूर्व विदेश मंत्री।
नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि दिल्ली में मणिशंकर अय्यर के घर पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मीटिंग की। उसके अगले दिन ही मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कहा। मोदी ने दावा भी किया कि पाकिस्तान आर्मी के पूर्व डायरेक्टर जनरल अरशद रफीक ने कहा था कि गुजरात में अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इन दावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। राज्य में बीजेपी के प्रवक्ता भरत पांड्या को सुनिए।
पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद का समर्थन देता है, वो तो साबित हुआ है। संदर्भ में बॉर्डर स्टेट में उनका नाम का सजेशन वाला मुख्यमंत्री बने, ऐसा कोई कहे, ये तो बहुत वो हो गया।
उधर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के दावों को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस नेता मनीष दोषी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है।
मैं मानता हूँ ऐसी कोई बैठक हुई नहीं है, ये बात में कोई तथ्य नहीं है। भाजपा को आज जवाब देना था, गुजरात के 6 करोड़ नागरिक को जिसने विश्वास करके इसको मत दिया था, इसके साथ क्यों इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इसका जवाब भाजपा
दे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी मुद्दों को बदलने में जुटे हैं, वो मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं।
मैं 22 साल की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि कहने को कुछ है नहीं, और भविष्य की बात मैं कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि अगर मैं करूंगा तो गुजरात उसको मानेगा नहीं।
गुजरात में दूसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के कल हुए मतदान के बाद दोनों ही पार्टियां बढ़त बनाने का दावा कर रही हैं।
सवाल है, आरोप है और नजर 14 दिसंबर पर है। रिपोर्ट सुना रहे थे रजनीश कुमार। अगली खबर हरियाणा के हिसार से। हिसार के उकलाना कस्बे में कल झुग्गियों में रहने वाली एक 5 साल की बच्ची का शव मिला। ये शव बेहद खराब स्थिति में था। पुलिस को आशंका है कि बच्ची के साथ रेप हुआ और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हमारे सहयोगी मनोज ढाका उकलाना पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, पुलिस से भी बात की। सुनिए उनकी रिपोर्ट जिसे पेश कर रहे हैं नवीन नेगी।
हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना कस्बे में मातम पसरा है। कल यहां 5 साल की एक बच्ची का शव मिला था। आरोप है कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ये बच्ची अपने माता पिता और बाकी 3 भाई बहनों के साथ कस्बे की एक झुग्गी में रहती थी। मजदूरी करने वाले बच्ची के पिता रमेश नाथ ने बताया,
शुक्रवार को छोड़ के गया था बच्चे में गुड़गांव। एक उसकी मम्मी थी और बाकी 3 बच्चे थे मेरे। तो जी रात को लड़की गायब हो गई थी घर से, इधर तो पत्नी कितने बजे हुई थी लेकिन पता सुबह लगा था। तो जी फिर तो वो उन्होंने ढूंढा आसपास पड़ोसियों के लिए, देखा तो नहीं, तो जी फिर वो आसपास गए थे देखने।
बच्ची की माँ के आंसू अभी तक नहीं थमे हैं, वो इंसाफ की मांग कर रही है।
किसी से आवाज आई, आपकी बेटी काट बाट के बुरी हालत नाल, बहुत बेहालत नाल मारी हुई। मैं तो उड़े गड़ी में मेरी पैर पिसल गया जी मेरे को, होश कब कुछ ना याद रहा, कहाँ होया कुछ होया मेरी बेटी के साथ, के होया के नहीं, बस पागल हो गई मैं तो, कुछ पता ना मेनू लग गया। इंसाफ मिलने चाहिए हम गरीबा को, उसको सजा होने चाहिए, उसको फांसी मिलने चाहिए।
हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, पुलिस ने एक जांच टीम बनाई है और दोषियों का सुराग देने वालों के लिए इनाम की भी सिफारिश की है। हिसार की एसपी मनीषा चौधरी ने बताया,
हमने इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जिसमें डीएसपी रैंक के ऑफिसर इसको हेड कर रहे हैं और बाकी उनकी असिस्टेंस के लिए हमारी साइबर और जो स्पेशल सीआईए की जो टीम्स हैं वो भी साथ में लगी हुई हैं, सभी एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने उसमें 2 लाख का अवार्ड के लिए डीजी सर को रिकमेंड करके भेज दिया है।
पुलिस का दावा है कि इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, वहीं इलाके के लोग पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह सिर्फ कस्बों की झुग्गियों तक नहीं है। दंगल फिल्म से चर्चा में आई अभिनेत्री जायरा वसीम ने आज इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। जायरा ने आरोप लगाया कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में उनके साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अशालीन बर्ताव किया। जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, सुनवाते हैं उसका एक अंश। जायरा कह रही हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, ये खौफनाक है। क्या लड़कियों की देखभाल का यही तरीका है? मुंबई पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने भी अपनी बात रखी। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
जहाँ तक अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं और जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार का अभद्र व्यवहार हमारे जहाजों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ये थे उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जो कार्रवाई की बात कर रहे थे। उधर राजस्थान के राजसमंद में हुई अफराजुल की हत्या के मामले में सरकार का दावा है कि उसने पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई की है। अफराजुल की हत्या के बाद उन्हें जलाने का वीडियो वायरल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से बात की और पूछा कि इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ है, उस पर वो लोगों को क्या भरोसा देंगे।
मैं सोचता हूँ कानून ने जो मुझे अधिकार दे रखा है अपराधी को पकड़ना और उसको सजा देना, एक भी केस अगर आपके ध्यान में हो याददाश्त में कि जिसमें अपराध जिसने किया हो उसके साथ नरमी की हो, केस नहीं बनाया हो, पकड़ा नहीं हो, जेल में नहीं डाला हो, तो आप बताओ।
लेकिन ये जो मामला हुआ है इसमें बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की भी सामने आई है। खुद आपकी सरकार को 3 दिन इंटरनेट बंद करना पड़ा। क्या आप नया करने जा रहे हैं, क्योंकि जो अपराध हुआ है जाहिर तौर पर आपकी कानून व्यवस्था पे सवाल बहुत गंभीर खड़े हुए हैं। क्या तैयारी है आपकी कि आगे ऐसी घटना ना हो?
राजस्थान में जिस प्रकार का किया, दुनिया में बाकी जो लोग हैं वो इसका उदाहरण बताएं कि हमने अभियुक्त को कितना जल्दी पकड़ा और पकड़ करके उसके ऊपर केस बनाकर अंदर डाला है। मैं सोचता हूँ कानून मुझे जो अधिकार देता है उसका उपयोग करके ही काम कर सकता हूँ। किसी को फांसी में मैं नहीं लटकाएगा, वो न्यायालय लटकाएगा। मेरी तरफ से केस बना करके पेश करना है और इतने कम समय में 12 घंटे भी नहीं लगे और मुलजिम पकड़ करके हमने दे दिया, इससे ज्यादा और क्या चीज कर सकते।
लेकिन सर सवाल ये है, जिस तरीके से सोशल मीडिया की भूमिका आई है और ये बात खुद आपके पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मुलजिम को जो इंस्टिगेट किया है सोशल मीडिया ने किया है, और जिस तरीके के वीडियो वो देख रहा था, क्या आप उन लोगों को संकेत देंगे जो
मैं सोचता हूँ जो गलती करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, सबके साथ कानून सजा देगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म और संप्रदाय को हो, कानून में उसको कोई रियायत नहीं है।
आपने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कल ऐसी कोई वारदात ना हो उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई योजना है आपके पास? क्योंकि सोशल मीडिया का जो दानव है सर आपके सामने खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति किसी संगठन से नहीं जुड़ा था, वो वीडियो देख के वायलेंट हुआ है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
देखो, मीडिया केवल गुलाबचंद कटारिया के अधिकार में नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान के अधिकार में है। इसके बारे में कोई निर्णय लेगा तो केंद्र की सरकार लेकर के ही क्या रास्ते हो सकते हैं और कैसे इसका उपयोग होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, उसके लिए कानूनी कोई प्रावधान भी लाएगा तो केंद्र सरकार लाएगी। राजस्थान सरकार तो अभी तक जो बने हुए कानून है उनके तहत रहते हुए कार्रवाई करना उसका काम है, जो मैंने किया है।
ये थे गुलाब चंद कटारिया और उनसे बात कर रहे थे दिलनवाज पाशा। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अरब लीग ने कहा है कि ट्रंप के फैसले से मध्य पूर्व में हिंसा बढ़ेगी और उन्हें अपना फैसला वापस लेना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं, जहां वो कल यूरोपीय देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद शाहिद।
लेबनान की राजधानी बैरूत में अमरीकी दूतावास में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शनकारी यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर विरोध जता रहे थे। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। ट्रंप के फैसले के खिलाफ मिस्र की राजधानी काहिरा, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी प्रदर्शन हुए। वहीं अरब लीग के 22 देशों के विदेश मंत्रियों की काहिरा में हुई बैठक में ट्रंप से अपना वापस लेने की मांग की गई। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि इस फैसले से मध्य पूर्व में हिंसा बढ़ेगी। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने कहा, यरूशलम को लेकर अमरीकी नीति में बदलाव एक खतरनाक बात है। अमरीका अधिग्रहण का समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता दिख रहा है। शांति प्रक्रिया के मध्यस्थ के तौर पर उसने खुद को अलग थलग कर लिया है। ये थे अरब लीग महासचिव के शब्द। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पेरिस में हैं। वो कल यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के पहले उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को अमरीका के बजाय फलस्तीनी क्षेत्र की ओर से किए जा रहे रॉकेट हमले की निंदा करनी चाहिए। मैं यूरोप को खासी अहमियत देता हूं, लेकिन मैं दोहरे मानकों को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के ऐतिहासिक ऐलान की आलोचना सुन रहा हूं, लेकिन इसराइल पर दागे जा रहे रॉकेटों की निंदा नहीं सुनाई दे रही है। इस अहम मंच पर मैं बिना डरे और गर्व के साथ इसराइल के सच का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये थे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। नेतन्याहू और यूरोपीय नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद। और अब वक्त है संग संग गुनगुनाओगे का। कला और संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र आज बात कर रहे हैं संगीतकार वनराज भाटिया की, जिन्हें संगीत की दुनिया में खासा सम्मान हासिल है। इस कड़ी का संपादन किया है अजीत सारथी ने और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं मोहनलाल शर्मा।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
आए चमन में फिर से निखार, आए चमन में फिर से निखार, आओ जो तुम तो आए बहार, आओ जो तुम तो आए बहार, रुत लहके रुत बहके कली खिले चमन झूम रहा, हमें पीछी है पल।
आधुनिक फिल्म संगीत में बिल्कुल अलग ढंग का मुकाम है संगीत निर्देशक वनराज भाटिया का, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने के साथ साथ बाकायदा पाश्चात्य संगीत भी सीखा हुआ था।
रात की ये है सोना सिंगार।
उन्होंने अपनी युवावस्था में लंदन जाकर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत सीखा था, जहां उनके शिक्षकों में हॉवर्ड फर्गुसन, एलन बुश और विलियम एल्विन जैसे लोग शामिल थे।
सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहा, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था।
मर्चेंट आइवरी की द हाउस होल्डर से अपने संगीत करियर की शुरुआत करने वाले वनराज भाटिया को हिंदी फिल्मों में पहला ऑफर श्याम बेनेगल की अंकुर फिल्म से मिला था। एक हद तक हम ये कह सकते हैं कि वनराज भाटिया का जो फिल्म संगीत का मामला है वो सारा संसार दरअसल श्याम बेनेगल के द्वारा बनाई गई फिल्मों से ही आकार लेता है। पहली बार वे निशांत फिल्म के माध्यम से सामने आए जब उन्होंने बेहद सुंदर और वैचारिक संगीत की सृजना की। इस फिल्म में पहली बार दक्कनी उर्दू गजल के मशहूर शायर कुली कुतुब शाह की गजलों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से एक गजल सुनी जा सकती है।
पिया जाए ना
वनराज भाटिया ने श्याम बेनेगल की जिन आरंभिक फिल्मों का महत्वपूर्ण संगीत रचा उनमें निशांत को छोड़कर हम मंथन और भूमिका के नाम ले सकते हैं। इनमें भी प्रीति सागर की आवाज का खूबसूरत इस्तेमाल करने में वनराज भाटिया अग्रणी रहे। ये कुछ वैसा ही मामला है जैसा कि ओपी नैयर अक्सर आशा भोसले की आवाज से किया करते थे। मंथन, जो आणंद गुजरात के दुग्ध सहकारी आंदोलन पर आधारित फिल्म थी, उसके थीम सॉन्ग को वनराज भाटिया ने दरअसल फिल्म की आत्मा बना दिया। गीत सुनते हुए आपको आज भी वैसी ही ताजगी महसूस होती है जैसे 30 वर्ष पूर्व मंथन के निर्माण के दौरान हुई थी। वनराज भाटिया के संगीत जीवन का उत्कर्ष यदि किसी फिल्म में देखा जा सकता है तो हम उसे आरंभिक फिल्मों में भूमिका में देख सकते हैं और बाद की फिल्मों में वो शिखर वे सरदारी बेगम जैसी फिल्म से छूते हैं। भूमिका के सारे ही गीत उल्लेखनीय थे जिनमें राग शुद्ध कल्याण पर आधारित सरस्वती राणे और सहयोगी आवाजों में मोंदर बाजूरे रहा हो या कि शास्त्रीय गायक फिरोज दस्तूर की आवाज में एक बेहद उल्लेखनीय गीत घर घर में राम रमैया। भूमिका फिल्म आज जिस गीत के लिए याद की जाती है वो दरअसल प्रीति सागर की आवाज में गाया हुआ वो गीत है जिसमें विरह और प्रेम का मिला जुला सौंदर्य दिखाई देता है। ये गीत आपको याद आ गया होगा।
तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी तुमसे मिला के अखिया, बलम जी तुमसे मिला के अखिया, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में।
श्याम बेनेगल की दूसरी फिल्मों मसलन मंडी, त्रिकाल, सूरज का सातवां घोड़ा, हरी भरी और मम्मू में भी वनराज भाटिया का सुंदर संगीत मौजूद रहा। हालांकि इसमें मंडी की दो गजलें बेहद मशहूर हुईं, जिनमें एक गीत को आशा जी का स्वर मिला था। इसी तरह मम्मो के लिए गुलजार साहब का लिखा हुआ हजार बार रुके हम हजार बार चले को दर्द भरी धुन में रचते हुए वनराज भाटिया ने गहरी संवेदनशीलता में ढाल दिया है और इस गीत को सुनते हुए आपको पीड़ा और त्रासदी के वो सारे चेहरे नजर आते हैं जो मम्मो की कथानक में भी विस्तार पाता है।
हजार बार रुके हम हजार बार चले, हजार बार रुके हम हजार बार चले।
शास्त्रीय संगीत पर आधारित और कोठों के पारंपरिक परिवेश का निर्माण करने में सफल रही सरदारी बेगम का हर दूसरा गीत हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गीतों में शुमार है। आशा भोसले, आरती अंकलीकर और शुभा जोशी की आवाजों में संगीतकार ने हर तरह की अभिव्यक्ति को सफल बना दिया, फिर वो होली का मामला हो या पारंपरिक ठुमरी का, मुजरा गीत हो या गजल, हर जगह वनराज भाटिया न सिर्फ सफल रहे बल्कि शिखर का संगीत रच पाए। एक दो गीतों के उदाहरण से ये बात समझी जानी चाहिए।
हो चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, चाहे मार डालो राजा चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे दिलदारी करेंगे।
और कान जो आए पलट के अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, मोर कान्हा जो आए पलट के, मोर कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के।
वनराज भाटिया एक ऐसे समय में हिंदी फिल्मों की कला और समानांतर सिनेमा की दुनिया में संगीत देने के लिए आए जब विस्थापन, विभाजन, त्रासदी और अन्य मानवीय तकलीफों को फिल्मों में दर्शाया जा रहा था। ऐसे में उन्होंने फिल्मों की कथा वस्तु को गहराई देते हुए अपने संगीत का व्याकरण रचा जिसमें भारतीय और पाश्चात्य संगीत का संतुलन देखा जा सकता है। पार्श्व संगीत के उत्कृष्ट जानकार के रूप में वनराज भाटिया का नाम अमर है और उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी मौलिक पार्श्व संगीत का काम किया जिसमें भारत एक खोज और तमस जैसे सीरियल याद किए जाते हैं। मैं यहाँ कुमार शाहनी की फिल्म तरंग का वो गीत सुनाना चाहता हूँ जिसे बहुत महान गीत के रूप में याद किया जाता है और जिसे लता जी की आवाज मिली और जिसे हिंदी के मशहूर कवि रघुवीर सहाय ने लिखा था।
ये कड़ी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और अब बात भारत और श्रीलंका के बीच धर्मशाला में हुए वनडे मैच की, सुनिए मैच का हाल आदेश कुमार गुप्त से।
धर्मशाला में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हराया। इससे पहले भारत के चीफ कोच रवि शास्त्री ने एक कमेंट लिखा था, धर्मशाला में आराम से सांस लो। इस धमाकेदार जीत से वाकई श्रीलंका ने आराम की सांस ली है। दिल्ली में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में सिर पर मंडराती हार को ड्रॉ में बदलकर बुलंद हौसलों से मैदान में खेलने उतरी श्रीलंका ने धर्मशाला में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद भारत का पुलिंदा 38.2 ओवर में ही केवल 112 रन पर बांध दिया। केवल 3 बल्लेबाज 2 अंकों तक पहुँचे। वो तो भला हो महेंद्र सिंह धोनी का जिन्होंने 65 रन बनाए। इसके बाद 19 रन तक 2 विकेट खोने के बाद श्रीलंका ने ओपुल थरंगा के 49, एंजेलो मैथ्यूज के नाबाद 25 और निरोशन डिक्विला के नाबाद 26 रन की मदद से 20.4 ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बनाकर 7 विकेट से जीत हासिल की। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए खराब था लेकिन ये हार टीम के लिए आंखें खोलने वाली साबित होगी।
टुडे वाज नॉट द आइडियल डे फॉर ऑल आवर बैटल्स बट होपफुली यू नो इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस यू नो होपफुली द नेक्स्ट फ्यू गेम्स वी कैन जस्ट रीग्रुप एंड कम आउट विद अ बेटर बैटिंग परफॉर्मेंस।
दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 13 तारीख को मोहाली में खेला जाएगा। इस मुकाबले में श्रीलंका के सुरंगा लकमल ने 13 रन देकर 4 और नुआन प्रदीप ने 37 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।
रिपोर्ट पेश कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और विदा लेने के पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। गुजरात के चुनावी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुजरात चुनाव में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। अरब देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिका से यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दिए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के 20 और संस्थानों और 1 दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ एक पक्षीय प्रतिबंधों का ऐलान किया है। 3 साल तक चली इस्लामिक स्टेट से जंग जीतने के ऐलान के बाद इराकी सुरक्षा बल बगदाद में जीत की परेड कर रहे हैं। ब्रिटिश ईरानी महिला नाजनीन जगारी को जल्द रिहा करने के समझौते के बिना ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन अपना 2 दिवसीय ईरान दौरा खत्म करके वहां से निकल गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।